कार्यक्रम परिक्रमा।
नमस्कार श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में ठीक 4:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने न्यूज मैगजीन परिक्रमा का। इसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं वो सभी जानकारी जिनका आपसे है सरोकार। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जगत के समाचार होंगे, चलेंगे अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास और जानेंगे क्या कुछ है उनके पास खास। इसके अलावा खेल जगत की गतिविधियों पर भी हमारी नजर रहेगी और उन विशिष्ट व्यक्तियों को भी हम याद करेंगे जिनकी आज पुण्यतिथि है, आज जन्म दिवस। तो श्रोताओं, परिक्रमा की संघ के साथ मैं हूं मुकेश कुमार और मेरे साथ है मेरे सहयोगी अभिषेक मुखोपाध्याय। अभिषेक, आपको भी मेरा नमस्कार।
हेलो मुकेश, हेलो एंड गुड आफ्टरनून। यू आर ट्यून्ड टू परिक्रमा ऑन 100.1 FM। आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय एंड विद मी टुडे इज माय को-होस्ट मुकेश। एंड फॉर यू वी हैव अ सिलेक्शन ऑफ न्यूज, अ डिस्कशन सेगमेंट, डेटलाइन इंडिया रिपोर्ट्स, कैप्सूल्स, बिजनेस ट्रिब्यूट्स एंड मच मोर। ऑल दीज ऑफ द नेक्स्ट 30 मिनट्स। वी बिगिन विद द न्यूज हेडलाइंस फर्स्ट। Prime Minister Narendra Modi to attend 15th India-Japan annual summit during his visit to Japan to embark on a two-nation visit this evening.
Pradhan Mantri ne kaha, PM Jan Dhan Yojana ne gharibon ka sashaktikaran kar pure Bharat mein jeevan badla.
IMD forecasts heavy to very heavy rain over Chhattisgarh, Karnataka, Maharashtra and Uttarakhand for today. Jammu-Srinagar National Highway remains closed due to landslides.
चीन की विजय दिवस परेड में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन शामिल होंगे।
एंड इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा क्वालिफाइज फॉर ग्रैंड चेस टूर फाइनल इन द यूएस। And now, listeners, it's time for a segment, Dateline India, in which we take a look at the developments taking place at the national or the global level. And today we will talk about 11 years of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana. Well, today marks 11 years of one of the world's largest financial inclusion programs, the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana, launched on this very day, 20th August, back in 2014.
जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना ने गरीब लोगों के लिए वित्तीय सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित की है। इसने बैंकों और बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों के बीच की दूरी को समाप्त किया है और सम्मान, आत्मनिर्भरता और आर्थिक समावेशन को बढ़ावा दिया है।
Yes, and a decade ago, banking for many Indians, especially in rural and marginalized communities, was a distant dream. Without access to formal financial services, millions relied on cash, savings at home, and high interest loans from informal lenders, trapping them in cycles of vulnerability.
बिल्कुल, वर्ष 2014 में इसी दिन ये हकीकत बदलने लगी। प्रधानमंत्री जनधन योजना राष्ट्रीय वित्तीय समावेशन मिशन के रूप में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य भारत में बैंकिंग सेवाओं से वंचित हर वयस्क को बैंक खाता, वित्तीय पहचान और ऋण, बीमा तथा पेंशन जैसी आवश्यक सेवाओं तक पहुंच प्रदान करना था।
एंड ऑन दिस ओकेजन यूनियन मिनिस्टर फॉर फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारामन इन अ मैसेज सेड फाइनेंशियल इंक्लूजन इज अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। Universal access to bank accounts enables the poor and marginalized to participate fully in the formal economy and benefit from its opportunities.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि प्रधानमंत्री जनधन योजना प्रत्यक्ष लाभ अंतरण का उपयोग करके विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत लाभ पहुंचाने, ऋण सेवाएं, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने और बचत तथा निवेश बढ़ाने के प्रमुख चैनलों में से एक रही है।
And guided by the mission of banking the unbanked, securing the unsecured, funding the unfunded, and serving the unserved and underserved, Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana has grown into the largest financial inclusion initiative in the world. And listeners, you'd be amazed to know that the Guinness World Records has also recognized the achievements made under the Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana.
जी हाँ, ये प्रमाणित किया गया है कि वित्तीय समावेशन अभियान के अंतर्गत एक सप्ताह में खोले गए सर्वाधिक बैंक खातों की संख्या 1,80,96,130 है और ये उपलब्धि भारत सरकार के वित्तीय सेवा विभाग ने प्राप्त की है।
सो लेट अस नाउ मेक यू अवेयर ऑफ द फीचर्स ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना अकाउंट्स। देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑफ बैलेंसेस और अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस इन अ फुल्ली केवाईसी कंप्लायंट पीएमजेडीवाई अकाउंट्स। It is a basic savings bank deposit account. The following free of cost facilities provided to PMJDY account holders: the deposit of cash at bank branch as well as ATMs, CDMs, receipt, credit of money through any electronic channel or by means of deposit, collection of checks drawn by central state government agencies and departments.
एक महीने में जमा की जाने वाली राशि की कोई सीमा नहीं है और एक महीने में कम से कम चार बार मुफ्त निकासी जिसमें मेट्रो एटीएम सहित किसी भी एटीएम से निकासी शामिल है. इसके बाद की निकासी पर बैंक शुल्क ले सकते हैं. 2,00,000 रुपए के दुर्घटना बीमा कवरेज के साथ मुफ्त रुपए डेबिट कार्ड भी प्रदान किया जाता है.
Now listeners, what if there was no financial inclusion? Imagine a country where millions of people have no access to a bank account, no safe place to save money, no way to borrow legally in emergencies, no access to insurance or pension, and no direct link to government support.
जी हाँ, वित्तीय समावेशन के बिना हमें जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें पहला है निरंतर गरीबी और शोषण. जी हाँ, बैंकों तक पहुंच के बिना गरीब लोग ऊंची ब्याज दरों पर साहूकारों पर निर्भर रहने को मजबूर रहते हैं. वे कर्ज के चक्र में फंस जाते हैं और सुरक्षित भविष्य बनाने में असमर्थ हो जाते हैं.
एंड सेकेंडली, नो सेफ्टी नेट इन इमरजेंसीज. विदाउट अ सेविंग्स अकाउंट और इंश्योरेंस, अ मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट और क्रॉप फेलियर कुड पुश फैमिलीज इनटू क्राइसिस. फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड्स रेजिलियंस ड्यूरिंग हार्ड टाइम्स.
और तीसरा है सरकारी कल्याण योजनाओं से वंचित होना. जी हाँ, बैंक खाते के बिना लोग प्रत्यक्ष लाभ अंतरण यानी डीबीटी प्राप्त नहीं कर सकते हैं. रसोई गैस, पेंशन, छात्रवृत्ति और राहत पैकेजों की सब्सिडी में देरी होगी या बिचौलियों के भ्रष्टाचार में खो जाएगी.
फोर्थली, लो सेविंग्स एंड नो इन्वेस्टमेंट. अ कैश बेस्ड अनबैंक्ड पॉपुलेशन मीन्स पीपल कीप मनी एट होम अनसेफ एंड अनयूज्ड. And banks help channel savings into investments, fueling economic growth. And without inclusion, that engine slows down.
और अभिषेक, पांचवी समस्या जो है वो ये है, शहरी ग्रामीण विभाजन बढ़ता जा रहा है. जी हाँ, गांवों और छोटे शहरों में वित्तीय पहुंच के अभाव में ग्रामीण लोग औपचारिक अर्थव्यवस्था से बाहर जाते हैं, जिससे शहरी और ग्रामीण भारत के बीच आर्थिक अंतर बढ़ता जा रहा है. और छठा, महिलाएं और कमजोर समूह पीछे छूट जाते हैं. वित्तीय पहुंच न होने पर सबसे पहले महिलाएं, दिव्यांग व्यक्ति और हाशिए पर रहने वाले समुदाय प्रभावित होते हैं. समावेशन से उन्हें स्वतंत्रता और सुरक्षा मिलती है, जिससे सामाजिक समानता में सुधार होता है. और सातवां, केवल नकद अर्थव्यवस्था यानी कम पारदर्शिता.
Yes, and without bank accounts and digital banking, the economy stays cash-heavy, making it harder to trace transactions, reduce corruption, or manage financial systems efficiently. And that's why schemes like Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana are so important. They're not just about opening bank accounts. They're about opening up a future where every Indian has the tools to build a better life.
और अभिषेक, सबसे खास बात यह है कि 56% जनधन खाते महिलाओं के हैं, जो वित्तीय पहुंच में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में इस योजना की भूमिका को प्रदर्शित करता है. महिलाओं, विशेष रूप से असंगठित क्षेत्र की महिलाओं को इस तरह की सामाजिक सुरक्षा और ऋण योजनाओं तक पहुंच का लाभ मिला है.
Yes, absolutely, Mukesh. And the success of the scheme is driven by its mission mode approach, regulatory backing, public-private partnerships, and the integration of digital public infrastructure like Aadhaar for biometric verification.
और इसने उन लोगों के लिए बचत और ऋण तक पहुंच को सक्षम बनाया है जो पहले औपचारिक वित्त से वंचित थे. बचत के स्पष्ट पैटर्न के साथ खाता धारक मुद्रा ऋण सहित ऋण भी प्राप्त कर रहे हैं, जिससे व्यक्ति को अपनी आय बढ़ाने और वित्तीय आसानी में सहायता मिल रही है.
And so to close off our discussion on 11 years of Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana today. So dear listeners, as we celebrate 11 years of the scheme, let us also spread the word. Talk to your friends, your house help, your driver, your vegetable vendor. Make sure they know about the scheme, because financial empowerment is the first step towards true independence.
याद रखें, वित्तीय समावेशन का मतलब केवल बैंक खाता खोलना नहीं है. यह अवसरों के द्वार खोलना, आजीविका की रक्षा करना और प्रत्येक नागरिक के लिए सम्मान सुनिश्चित करना है. प्रधानमंत्री जनधन योजना एक सरकारी योजना से कहीं बढ़कर है. ये एक समावेशी, सुरक्षित और सशक्त भारत बनाने का आंदोलन है. ये योजना अपने 12वें वर्ष में प्रवेश कर रही है और समावेशी विकास, डिजिटल नवाचार और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रतीक बनी हुई है. इसकी निरंतर सफलता भारत की इस प्रतिबद्धता को दर्शाती है कि वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा में कोई भी नागरिक पीछे ना छूटे. और अभिषेक, अब कार्यक्रम का नाम है परिक्रमा. तो अब परिक्रमा का असली समय आया है। जी हां, अब हम अपने क्षेत्रीय संवाददाताओं के पास चलेंगे और जानेंगे कि उनके पास क्या विशेष है। तो इस क्रम में सबसे पहले कहां चलें?
Why not go to Tokyo?
जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15वें शिखर सम्मेलन के लिए आज जापान के लिए रवाना होंगे। भारत और जापान के रिश्ते बरसों पुराने हैं और ये रिश्ता भारतीय संस्कृति, कला और योग के प्रति जापान के लोगों में बढ़ती रुचि से और गहरा होता जा रहा है। तो सुनते हैं ओम अवस्थी की रिपोर्ट।
भारत और जापान के संबंधों को बेहतर सरकार की नीतियों के साथ ही दोनों देशों के लोग के आपसी संबंध भी बना रहे हैं। जापान के लोगों में भारत की संस्कृति, भाषा, योग और कला के प्रति रुचि लगातार बढ़ रही है। भगवद गीता का जापानी भाषा में अनुवाद करने वाले हिरोयुकी सातो कहते हैं, किसी भी देश को समझने के लिए उसकी संस्कृति को समझना जरूरी है। यही वजह है कि उन्होंने सरल जापानी भाषा में भगवद गीता का अनुवाद किया है।
भारतीय संस्कृति का स्वरूप सब लोग कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता है, इसलिए मैंने पहले श्रीमद् भगवद गीता को जापानी भाषा में अनुवाद करके प्रकाशित किया है। मेरा उद्देश्य जापानी लोगों को भी श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर जीने का प्रेरणा मिलना था।
टोक्यो में इंडियन रेस्टोरेंट चलाने वाले अनिल राज कहते हैं कि जापान के लोगों में इंडियन कुजीन के प्रति रुचि बढ़ी है। कई जापानी उनके रोजाना के ग्राहक हैं, जो नॉन वेजिटेरियन के साथ ही वेजिटेरियन इंडियन फूड को भी खूब पसंद कर रहे हैं। यही वजह है कि टोक्यो में इंडियन फूड जॉइंट्स की संख्या में भी वृद्धि हुई है।
20 साल में हमने बहुत डोसा को प्रमोट किया है, इडली को प्रमोट किया है। पहले हमारे शुरू होने से पहले यहाँ जापान में खाली नान, बटर चिकन और तंदूरी चिकन चलता था। अभी साउथ इंडियन आइटम्स भी बहुत मिलते हैं, अभी बहुत साउथ इंडियन रेस्टोरेंट्स भी हैं। जापानी अभी बहुत लाइक करने लगे हैं।
बनारस से हिंदी भाषा और शास्त्रीय संगीत सीखने वाले टोक्यो के सिगेरु मोरियम कहते हैं कि जापान में भारतीय भोजन और संगीत के प्रति लोगों में काफी उत्साह बढ़ रहा है। 12 वर्ष से राजस्थानी फोक डांस कर रही टोक्यो की मधु कहती हैं, वह फिल्म में फोक डांस को देखकर बहुत प्रभावित हुई और उसके बाद राजस्थान जाकर उन्होंने फोक डांस सीखा। इस बार वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए बेहद उत्साहित हैं। पेशे से इंजीनियर अहिको यमादा कहते हैं कि योग के कारण उनकी भारत के बारे में जानने में उत्सुकता बढ़ी है। वह कहते हैं कि भारत ने दुनिया को योग दिया है जो सभी के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। दो देशों को जोड़ने के लिए नीतियों के साथ ही लोगों का एक दूसरे की संस्कृति के प्रति सम्मान जरूरी है। जापान के लोगों में भारत के योग, कला और संस्कृति के प्रति रुचि ने बरसों पुराने दोनों देशों के संबंधों को और बेहतर करने का काम किया है। टोक्यो से परिक्रमा के लिए ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार।
और अब चलते हैं उड़ीसा।
Nuwakhai is a much awaited festival in Odisha, particularly in the western part of the state, and it is celebrated the day after Ganesh Chaturthi and is the region's leading agricultural festival. And Mukesh, during this festival today, people offered the first harvest, the paddy or nanba, to the deities in the morning. People enjoyed the festival by wearing Sambalpuri folk saris and traditional dresses, and it brings joy and happiness to the people of Western Odisha. Let's hear more from a correspondent.
Odisha hosts 13 festivals throughout the year, with Nuwakhai being the most prominent in Western Odisha. The region has a dense population of tribal communities whose primary occupation is agriculture, which is why they celebrate Nuwakhai. Nuwa means new and Khai means food. On this auspicious occasion, the people of Western Odisha offer the freshly harvested paddy to their respective deities. Goddess Samleshwari is worshipped in Sambalpur, Parneshwari in Balangir, Sureshwari in Sonpur, Shekhar Vasani in Sundargarh and Manikeshwari in Kalahandi, with offerings of the new crop made to each. The festival celebrates social bonds and strengthens family ties. People from various parts of the country return to their hometowns to partake in the festivities. Special rituals are performed at the Ma Samleshwari temple in Sambalpur. The most significant ritual of Nuwakhai Juhar involves exchanging greetings with friends, relatives and well-wishers. With Asan Patnaik and Sukhani Jena for Akashvani.
और अब चलते हैं गोवा। बैकुंठ दत्ताराम कुंकर्लीकर, जिन्हें हिंदी सिनेमा जगत की के बैकुंठ के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म आज से ठीक 100 वर्ष पहले 25 अगस्त 1925 को गोवा में मडगांव के कोम्बावांगा में हुआ था। सिनेमाई कैमरे के जादूगर नाम से मशहूर के बैकुंठ हिंदी फिल्म जगत के उन चुनिंदा सिनेमेटोग्राफर्स में से एक थे जिनके कैमरे से निकलते हर फ्रेम में एक खास जादू होता था। तो सुनते हैं रिपोर्ट।
के बैकुंठ ने अपने करियर में कई यादगार और सुपरहिट फिल्मों की सिनेमाटोग्राफी की। उनकी फिल्मों की सूची देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि उन्होंने कैसे कैसे दौर और कहानियों को अपने कैमरे में कैद किया। मेरे सनम, राज, मेरे हमदम, मेरे दोस्त, आंधी, परिचय, मौसम, सीता और गीता जैसी तमाम फिल्में आज भी उनके कैमरे की वजह से जिंदा है। चाहे रोमांटिक गीत हो या तेज रफ्तार एक्शन सीन, वे हर फ्रेम को ऐसा गढ़ते थे कि वह लंबे समय तक दर्शकों के दिल में रह जाए। उन्होंने कई गीतों का फिल्मांकन किया, लेकिन इनमें से कुछ चुनिंदा गीत ऐसे हैं जो उनकी हुनर की गहराई को बखूबी उजागर करते हैं।
पुकारता चला हूं मैं गली गली बहार की, बस एक छांव जुल्फ की।
कश्मीर की वादियाँ, जीप में विश्वजीत और साइकिल पर आशा पारेख, हल्की फुल्की छेड़छाड़, मोहब्बत की शुरुआत और बैकुंठ का कैमरा हर मोड़ पर उस प्यार को रंग देता है।
अकेले हैं चले आओ जहाँ हो, अकेले हैं चले आओ जहाँ हो।
गोवा की खदानों के बीच शूट हुआ रहस्य और रोमांस से भरा ये गीत, जिसे बैकुंठ की सिनेमाटोग्राफी ने और ही रहस्यमयी बना दिया।
जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
मुंबई की सड़कों पर ट्रैफिक के बीच मोटरसाइकिल पर गाते राजेश खन्ना और पीछे बैठी हेमा मालिनी, यह गीत जितना मशहूर हुआ उतना ही बैकुंठ के चलते पर्दे पर खूबसूरत दिखा।
मुसाफिर हूँ यारो, ना घर है ना ठिकाना, मुझे चलते जाना है।
गांव की सादगी, बैलगाड़ी की लय और जितेंद्र की सौम्य मुस्कान, इस गीत में कैमरा न सिर्फ दृश्य दिखाता है बल्कि मानो गीत का ही हिस्सा बन जाता है। के बैकुंठ के काम में तकनीक भी थी और तजुर्बा भी, वे ये जानते थे कि कैसे एक कहानी को आंखों के जरिए महसूस कराया जाए, और यही तो एक सिनेमा के जादूगर की पहचान होती है। मडगांव की धरती पर ऐसा असाधारण कलाकार बैकुंठ फिर कब जन्म लेगा ये शायद कोई नहीं जानता, पर जब तक उनकी बनाई रोशनी से भरी वो तस्वीरें हमारे बीच हैं, तब तक के बैकुंठ का नाम और काम दोनों ही जिंदा रहेगा। निखिल उपाध्याय, आकाशवाणी न्यूज, पणजी।
और अभिषेक, गोवा से अब हमारे श्रोताओं को ले चलिए महाराष्ट्र।
यस, एंड मराठवाड़ा वेलकम लॉर्ड गणेश विद ग्रेट फेवर। लेट्स हियर रिपोर्ट।
इन छत्रपति संभाजीनगर द इंस्टॉलेशन एंड वर्शिप ऑफ द ट्रेडिशनल ग्राम दैवत संस्थान गणपति वॉज परफॉर्म बाय लीडर्स अक्रॉस पॉलिटिकल पार्टीज। दिस ईयर गणेश मंडल्स आर टेकिंग द इनिशिएटिव फॉर अ ड्रग फ्री सिटी। ऑल्सो वेरियस गणेश मंडल्स आर फोकसिंग ऑन द वन मंडल वन ट्री कैंपेन एंड क्लीनलीनेस ड्राइव। इन नांदेड डिस्ट्रिक्ट इको फ्रेंडली गणेश आइडल्स आर बीइंग इंस्टॉल्ड एट देगलूर। इन बीड डिस्ट्रिक्ट गणेश आइडल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड एट 1762 पब्लिक लोकेशंस। Ensure smooth celebrations, the police department has deployed 2,500 police personnel. This year, good rainfall in Latur district has brought joy and relief among farmers, adding to the festive spirit. In Dharasiv district, a unique book reading Ganpati has been installed at the Umarga by Professor Shyam Rao Raghunath Rao Chauhan Memorial Library. Samarjit Thakur, Akashwani, Chhatrapati Sambhajinagar.
और अब चलते हैं खेल के मैदान में और जानते हैं वहां की हलचल। तो सबसे पहले बात करते हैं शतरंज की। भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंद ने ग्रैंडमास्टर टूर शतरंज टूर फाइनल में जगह बना ली है। प्रज्ञानानंद ने सिंगफील्ड कप में उपविजेता बनकर अपनी जगह पक्की की है। अमरीका के वेस्ली सू ने इस टूर्नामेंट का खिताब जीता है। वेस्ली सू ने 9वें और अंतिम दौर में उज्बेकिस्तान के नोदिरबेक अब्दुल सत्तारोव को हराया और प्रज्ञानानंद तथा फेबियानो करुआना के साथ ड्रॉ खेला। प्रज्ञानानंद ने अमरीका की लेवोन एरोनियन से ड्रॉ खेला और करवाना को हराया, जबकि करवाना ने टाई ब्रेकर में एकमात्र ड्रॉ वेस्ली सो के साथ खेला। और बैडमिंटन की बात करते हैं तो भारत के शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी तथा ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु कल पेरिस में बीडब्ल्यूएफ विश्व चैंपियनशिप के अंतिम 16 में पहुंच गए हैं। सात्विक और चिराग की भारतीय जोड़ी ने चीनी ताइपे के लियू क्वांग हेंग और यांग पो हान को हराया। अब उनका सामना चीन के लियांग वेई केंग और वांग चांग से होगा। महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु ने मलेशिया की करुपा थेवन लेशाना को हराया। मिक्स डबल्स में भारत के ध्रुव कपिला और तनिषा क्रिस्टो ने आयरलैंड के जोशुआ मैगी और मोया रयान को हराकर अंतिम 16 में जगह बनाई। अब उनका सामना हांगकांग चीन के तांग चुन मान और चे यिंग स्वीट से होगा।
And moving on to some business news, benchmark domestic equity indices ended over 0.8% down each. The Sensex lost 706 points to close at 80,080. Similarly, Nifty dipped 211 points to settle at 24,500. The broader market indices at the Bombay Stock Exchange ended on a negative note. The mid-cap index declined 1.1% and the small-cap index down nearly 1%. The decline came due to the imposition of additional U.S. tariffs since yesterday.
और अब हम याद करेंगे उन महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे उन महान व्यक्तियों की जिनकी आज है पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन।
In today's episode, we bring you the story of a great freedom fighter and social reformer from Gujarat, Jhaver Chand Meghani. Jhaver Chand Meghani was born on this day in 1896 in Chotila town of Surendranagar district in Gujarat. Inclined towards literature from a young age, he wrote his very first poem when he was just 12. He went on to pursue degrees in both Sanskrit and English literature. In 1930, the noted poet and writer was sentenced to 2 years in jail for writing the book Sindhu that contained songs to inspire the youth participating in the struggle for independence from the British Raj.
It was during this time that he wrote Kavya Tripoti, based on Gandhiji's visit to London for the Round Table Conference. He was conferred the title of Rashtra Shayar, or a national poet, by Mahatma Gandhi. Sardar Vallabhbhai Patel praised him and said he was a voice full of courage. One of his most famous songs, Mor Bani Thangat Kare, My Mind Dances Like a Peacock, was used in the 2013 Hindi film Goliyo Ki Rasleela Ram Leela.
Meghani authored more than 100 books. His first book was a translation work of Rabindranath Tagore's ballad Kotha O Kahini, titled Kurbani Niye Kotha, Stories of Martyrdom, which was first published in 1922. He was also the editor of Phool Chhab newspaper of Janmabhoomi Group, which is being published till date from Rajkot.
It was also on this day in 1928 that the Nehru Committee Report, or the Nehru Report, was submitted at the Lucknow session of the All Party Conference. A committee headed by Motilal Nehru, with Jawaharlal Nehru as the secretary, was set up to draft a constitution. When the Simon Commission came to India in 1928, it was vehemently opposed by Indians, especially by the Indian National Congress, for the lack of a single Indian in the commission. So, the Secretary of the State for India, Lord Birkenhead, challenged the Indian leaders to draft a constitution for India, implicitly implying that Indians were not capable of finding a common path and drafting a constitution.
The political leaders accepted this challenge, and an all-party conference was held and a committee report appointed with the task of drafting a constitution. The Nehru report had the primary motive of assigning dominion status to India within the British Commonwealth. Some of the main recommendations of the report were the formation of a federal form of government with residuary powers in the hands of centre, enshrinement of 19 fundamental rights, including the right to vote for men and women above 21 years of age, equal rights for men and women as citizens, no state religion, and a proposal for the creation of a Supreme Court. In fact, the Nehru Report was the first major attempt by Indians to draft a constitution of India.
Today is the death anniversary of the great freedom fighter Chengjapao Dongel from Manipur, popularly known as Chengjapao Kuki. He was one of the Kuki leaders who questioned the British authority during the Kuki uprising of 1917-1919. During the Second World War, he organized Kukis against colonial and feudal authority of the British under the banner of the Indian National Army. He was the chief of Assen, the city of Dongal clan. During the reign of Chengjapao, Assen's glory spread far and wide and it became the most powerful city. The British government saw the rise of Chengjapao Dongel and the revolt of the Kukis as a serious threat to the eastern part of India. Chengjapao Dongel was arrested and sent to jail for 4 years.
After India gained its independence, the government, in recognition of the bravery shown by the Kuki heroes and in memory of the war of independence they had fought, gave a grant for the construction of Kuki Inn, which today stands in the heart of the Imphal town, Chengjapao Dongel's name will continue to be remembered with honor and reverence in the history of India's freedom struggle.
And we are also remembering Sir N. Madhav Rao, who passed away on this day in 1972. He was an Indian civil servant, administrator and statesman who served as the 23rd Diwan of Mysore from 1941 to 1945 and later as a member of the drafting committee of the Constituent Assembly which drafted the Indian Constitution, and also Shivram Chakraborty, who passed away on this day in 1980. He was an Indian writer and humorist. His best known short stories and novels are renowned for the unique use of pun, alliteration, play of words and ironic humor. He was a prolific author who also wrote poems, plays, non-fiction and novels for mature audiences in his long career.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत की प्रसिद्ध उर्दू के जाने माने शायर फिराक गोरखपुरी को. उनका असली नाम रघुपति सहाय था. उन्हें उर्दू कविता को बोलियों से जोड़कर उनमें नई लोच और रंगत पैदा करने का श्रेय दिया जाता है. फिराक उनका तखल्लुस था. फिराक गोरखपुरी ने अपने साहित्यिक जीवन का आरंभ गजल से किया था. फारसी, हिंदी, ब्रजभाषा और भारतीय संस्कृति की गहरी समझ होने के कारण उनकी शायरी में भारत की मूल पहचान रच बस गई थी. उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार और सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. वर्ष 1970 में उन्हें साहित्य अकादमी का सदस्य भी मनोनीत किया गया. तो उनकी एक गजल सुनते हैं.
तन्हाई में किसे बुलाएं ऐ दोस्त, किसके पास जाएं ऐ दोस्त, इस दौलत के वक्त से तो दम घुटता है, ये नकदे शब कहां भुनाएं. सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन, तू है सर बसर कोई दास्तां है अजीब आलम अंजुमन.
Yes, and Jack Kirby was born on this day in 1917. He was an American comic book artist, widely regarded as one of the medium's major innovators and one of its most prolific and influential creators. He grew up in New York City and learned to draw cartoon figures by tracing characters from comic strips and editorial cartoons. He entered the nascent comics industry in the 1930s, drawing various comics features under different pen names. Before settling on Jack Kirby. In 1940, he and co-writer-editor Joe Simon created the highly successful superhero character Captain America for Timely Comics, predecessor of Marvel Comics. And during the 1940s, Kirby regularly teamed with Simon, creating numerous characters for that company and for National Comics Publications, later to become DC Comics.
और अब हम याद कर रहे हैं भारत के प्रसिद्ध सितार वादक विलायत खां को. आज उनकी पुण्यतिथि है. उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ख्याति प्राप्त की थी. उस्ताद विलायत खां की पिछली कई पुश्तें सितार वादन से जुड़ी रही थीं. इनके पिता इनायत हुसैन खां ने से पहले उस्ताद इमदाद हुसैन खां भी जाने माने सितार वादक रहे थे. विलायत खां ने सितार वादन की अपनी अलग गायन शैली विकसित की थी, जिसमें श्रोताओं पर गायन का एहसास होता था. उनकी कला के सम्मान में राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उन्हें आफताबे सितार का सम्मान दिया था. और ये सम्मान पाने वाले वो एकमात्र वादक थे. तो सुनते हैं उनका सितार.
Yes, and Shania Twain was born on this day in 1965. She's a Canadian singer-songwriter. She has sold over 100 million records, making her one of the best-selling music artists of all time and the best-selling female artist in the country music history. She received several titles, including the Queen of Country Pop. Billboard named her as a leader of the 1990s country pop crossover stars. Let's listen in to one of her hit songs.
Looks like we made it. Look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday.
और अब हम याद कर रहे हैं भोपाल रियासत की राजकुमारी आबिदा सुल्तान को. आज उनकी जयंती है. आबिदा सुल्तान को भारत की पहली महिला पायलट होने का गौरव प्राप्त था. उन्हें 25 जनवरी 1942 को उड़ान लाइसेंस मिला था. और इसके अलावा हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध पत्रिका हंस के संपादक और लोकप्रिय उपन्यासकार राजेंद्र यादव की आज जयंती है। राजेंद्र यादव ने 1951 में आगरा विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की परीक्षा प्रथम श्रेणी में प्राप्त की थी और उपन्यास, कहानी, कविता और आलोचना सहित साहित्य की तमाम विधाओं पर उनकी समान पकड़ थी। उन्होंने आकाशवाणी के साथ भी काम किया था।
Yes, and also Jack Black was born on this day in 1969. He's an American actor, comedian and musician. He's known for roles in family and comedy films, in addition to his voice work in animated films.
तो श्रोताओं, इसी के साथ आपसे अनुमति लेने का समय हो गया है, तो इजाजत दीजिए मुकेश कुमार और अभिषेक मुखोपाध्याय को परिक्रमा कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करने की। नमस्कार।